सरस्वती पुत्र, निष्काम साधक, प्रबल पुरुषार्थ के धनी, मानवीय मूल्यों के संवाहक श्री गुरुदेव एक ऐसी दिव्य ज्योति हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। अपनी साधना की शक्ति से भक्तों के प्राणों की रक्षा एवं कष्टों का निवारण करने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पल भर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि योग शक्ति के अधीन सब कुछ संभव है। विश्व के हजारों भक्तों ने विविध रूपों में उनकी उपस्थिति को अनुभव किया है। वे एक ऐसे गुरु हैं जो मनुष्य की आत्मा को ईश्वर के मंदिर में स्थापित कर देते हैं, ताकि सबके मुख पर ईश्वरीय मुस्कान ला सकें।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
हनुमान इसलिए पूजनीय हुए कि वो राम के सबसे बड़े भक्त थे। उतना बड़ा भक्त कोई न हुआ, तो मेरे लिए हर भक्त पूजनीय होता है जो प्रभु में भक्ति रखता है। मैं उस सभी भक्तों को नमन करता हूं। कहते हैं कि अगर नौकरी भी करना हो मेरे बंधु, तो शेर का करना, बकरी का मालिक न बनना। शेर का नौकर भी शेर जैसे होता है और बकरी का मालिक भी बकरी जैसे होता है। तो अगर हम प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के दास हैं, तो हम भी वैसे ही होंगे जैसे प्रभु होगा, जैसे ईश्वर होगा। देखना, अगर तुम आग के पास जाओगे तो जलोगे, बर्फ के पास जाओगे तो ठंडा होगा, शीतल होगा, आग के पास गर्मी लगेगी। जिसके पास जाओगे वह क्षमता, वह शक्ति तुम्हें प्राप्त होती है। तो अगर हम प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु की जो महासत्ता है, वह सत्ता, वह शक्ति हमें प्राप्त होगी। आग के पास गर्मी आई, बर्फ के पास ठंडी, शीतल हवा के पास शीतलता। तो उसी तरह अगर हम प्रभु के पास जाएंगे तो वो हमें भी उस प्राप्त होगी। अब देखना, मैं तुम्हें एक उदाहरण बताता हूं। इस संसार में बहुत सारे मत के लोग हुए। किसी ने कहा भगवान है, किसी ने कहा भगवान नहीं है, किसी ने कहा ये असत्य है, किसी ने कहा ये सत्य है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि अटकना नहीं तुम, अटकना नहीं तुम। अगर तुम मानते हो कि भगवान नहीं है तो बढ़ते रहना, इसलिए कि कहीं ना कहीं उसमें भी भगवान की नाम आ रही है। नहीं है तो कौन नहीं है? असत्य, कोई बोलता है ये असत्य है, असत्य में से अ हटाओ तो क्या बचता है? सत्य। हटाना आवरण है, हटाना अपनी मूर्खता को है, हटाने हमारे आवरण को है। एक बार वो हटी, वो सत्य आ गया। कहते हैं असंभव, इस दुनिया में कोई असंभव चीज नहीं है। अ को हटा करके देखो, बच जाता है संभव। तो मेरे बंधुओं, तुम्हें भड़काने वाले, पथ से पथभ्रष्ट करने वाले, हटाने वाले बहुत मिलेंगे। अब मत क्यों बना, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं। मैं आप लोगों को कल बता रहा था कि कुछ काम दिमाग से होता है, कुछ काम दिल से होता है, और कुछ काम दिलो दिमाग दोनों से होता है। अब धर्म अनंत रहा, देखो अनंत है, वैज्ञानिक भी इस पर विश्वास किए हैं। गणित में एक से एक भाग देंगे तो क्या होगा? एक में एक से भाग देंगे तो क्या होगा? एक। जीरो में एक से भाग देंगे तो क्या होगा? जीरो। और एक में जीरो से भाग देंगे तो क्या होगा? अनंत, इन्फिनिटी। तो देखो गणितज्ञ भी मानते हैं कि अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, और जहां से अनंत की शुरुआत होती है परमात्मा की शुरुआत वहीं से हो जाती है। जहां से अनंत है प्रभु वहीं से शुरू हो जाता है। तो अब देख, धर्म अनंत है, आत्मा अनंत है, दिमाग हमारा लिमिटेड है, सिर्फ 487 शब्दों का दिमाग, सिर्फ 487 शब्द चल रहा है, एक बार में इससे अधिक शब्द नहीं हट सकते हैं, और हम लिमिटेड एक छोटी चीज से अनंत को देखने चले, तो मेरी दृष्टि जहां तक पहुंची, मेरा दिमाग जहां तक पहुंचा वहां तक मैं पाया, और नहीं पहुंचा तो नहीं हुआ। शेक्सपियर को अंग्रेजी का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है शेक्सपियर को, और कालिदास को संस्कृत का पिता कहा जाता है, उतने बड़ा विद्वान कोई नहीं हुआ। अब जरा सोचो, शेक्सपियर भी लिखते हैं कि अंग्रेजी एक समुद्र है, मैं समुद्र में प्रवेश किया लेकिन मैं किनारे रह गया, जो व्यक्ति जितना गोता लगाएगा जितना अंदर जाएगा उतना ही पाएगा, मैं तो किनारा रह करके थोड़े ही पाया हूं, जो जितना अंदर जाएगा उतना मोती पाएगा। कालिदास जी भी यही कहते हैं। मेरे बंधुओं, तो भगवान को धर्म को हम कैसे इतनी जल्दी समझ जाएंगे? कैसे कैसे तुम सोचते हो कि हम दिमाग से उसे बांध सकते हैं? 487 अगर मेरे पास 1,00,000 शब्दों का कोटा है तो मैं धर्म को कितने शब्दों में बांटूंगा? 1,00,000 उसी के अंदर 10,000 है, 10,000 शब्दों में बांधूंगा उसको, बांधूंगा। यही हुई हमारे यहां मत का। हिमालय पर्वत देखने चले, हिमालय पर्वत देखने चले, चार आदमी हुए और चारों के हाथ में टॉर्च दे दिया गया, कहा गया जाके हिमालय पर्वत देख करके आओ। एक गया टॉर्च जलाया और उसे दिखता पत्थर, वो आके बोला हिमालय पत्थरों से बना है। कोई जलाया उसको झाड़ियां दिखी, वो बोला पेड़ पौधे झाड़ियों से बना है। तीसरा गया जलाया उसे मट्टी दिखा, बोला उसमें मट्टी भी है और छोटे छोटे घास भी हैं। चौथा गया और उसे बर्फ दिखा तो उसने कहा हिम से आच्छादित है हिमालय, बर्फ से बना है। अब जरा बताओ चारों में सही कौन है? चारों सत्य हैं। हुआ क्या कि दो सेल का टर्च था, टर्च छोटा था, दृष्टि छोटी थी, और हिमालय इतना बड़ा कि टर्च में आए नहीं, तुम्हारी आंख में आए नहीं, तुम्हारे दिमाग में आए नहीं, तो तुमने जो देखा उसने जो देखा वो कहा, उसने जो देखा वो कहा, जिसको जो दिखा वो कह दिया। परमात्मा को नापना बड़ा मुश्किल है। कल मैं कहा था आपसे कि मुरारी बापू से एक आदमी ने पूछा कि भगवान राम की ऊंचाई कितनी थी, फंस गए थे वो, पुणावती होने को थी, बापू सोच रहे थे इसका जवाब क्या दिया जाए। उन्होंने कहा हमसे, मैंने कहा बापू ये जवाब आपके लायक नहीं है, इसलिए कहते हैं कि जवाब जो इस प्रश्न है ये तो निरर्थक प्रश्न है, इसका कोई कोई अर्थ नहीं। बोल जाएगा कि महावीर की लंबाई कितनी थी, अरे कौन नापा था जाकर के, अरे भगवान को नापे कौन? हमारे पास नापने की अगर चीज उससे बड़ी है तब तो हम नाप सकते हैं। अगर मेरे पास मीटर है जो हम 100 मीटर नाप सकते हैं तो हम 100 मीटर नाप सकते हैं। मेरे पास नापने के लिए 1 मीटर की है तो 1,000 मीटर कैसे नापे? नापने की जो मात्रा है वो तो हमारे पास बड़ी होनी चाहिए, तो भगवान से बड़ा कौन है, ईश्वर से बड़ा कौन है? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं वही जवाब दूंगा। गुरु जी आप पहले तैयारी कर लीजिए, वो तो 10 मेरे पीछे पड़ गए 9 दिन से, ये तो 9वां दिन आज अंतिम दिन तक तो मैं टाल के आया हूँ, आज क्या जवाब दूं? बोले मुझे चलने दीजिए। बारी आई वो, और मुरारी बापू का प्रवचन शुरू हुआ, वो खड़ा हो गया कि बापू आपने मुझे 9 दिन से टरका रहे हैं आप, वो ऐसे मतलब शब्द भी कुछ ऐसे ही बोला। लेकिन कौवा तो कौवा जैसे ही बोलेगा। बापू मेरे तरफ देखने लगे, उन्होंने कहा इसका जवाब गुरु आनंद स्वामी जी देंगे। तो वो मेरे पीछे पड़ गया, कब देंगे? अरे भाई मेरी बारी आएगी। प्रवचन शुरू हुई, मेरी भी वहां प्रवचन थी, तो उसने पूछा कि स्वामी जी आपने तो प्रवचन खत्म कर दी, मेरा तो जवाब दिया नहीं। मैंने कहा जानते हो इस संसार में अभी तक 37 प्रकार के रामायण लिखे गए, अधिकृत जिसको मान्यता मिली है, ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन 37 प्रकार। एक आंध्रा के विवेमना ने भी लिखा बहुत सुंदर रामायण, राम नीति अश्लोका करके उन्होंने लिखा है, लेकिन रामायण है। तो उस रामायण में मैं एक चीज जानता हूं, राम की लंबाई कितनी थी ये मैं तुम्हें बता देता हूं, नापना तुम्हारा काम है। कहा गया है कि जिसका पांव पताल में और सर आकाश लोक में है, तो पांव पताल में है सर आकाश लोक में, अब तुम नाप लेना, नाप के मुझे भी पत्र लिख देना। नापने का काम तुम्हारा है, मैं लंबाई बताता हूं कि जिसका सर पताल लोक में है, पैर पताल लोक में है और सर आकाश लोक में है, इतनी ऊंचाई थी उनकी। अब तुम्हारे पास कितनी बड़ी मीटर है उसे नाप करके, और नाप के छोड़ना नहीं, मुझे भी पत्र लिखना और अपना एड्रेस दे। वो दिया था एड्रेस, में मैंने यहां से पत्र भी लिखवाया। तीन पत्र के बाद वो चौथे बार दौड़ा दौड़ाया, बोला गुरु जी मुझसे नापा नहीं जाएगा, क्षमा कीजिए। तो प्रश्न हमारे निरर्थक नहीं होने चाहिए, जिसका कोई ये नहीं है। अरे धर्म को दिखाओ, भगवान को दिखाओ। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, भगवान कोई कहते तुम साबित करो कि भगवान है कि नहीं, भगवान है कि नहीं। अरे सत्य को साबित करने की क्या जरूरत है, माताजी इस मूर्ति में है कि नहीं, सत्य को साबित करने की क्या जरूरत, जो है वो है। साबित तो असत्य करे, जो नहीं है वो साबित करे। जो है सूरज पूरब में उगता है पश्चिम में डूबता है, इसे हम क्यों साबित करें, सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो नहीं मानता है वो मूर्ख है, अपने पहले मूर्खता को मिटाए। साबित भगवान को नहीं करना है, साबित उसकी अज्ञानता को करना है कि जहां वो अज्ञान है, मूर्छित है, किसी न किसी रूप में वो मूर्छित है, किसी न किसी रूप में वो बेहोश है। आज तुम अपने जीवन में अगर आगे बढ़ते हो, बड़ा कार्य करते हो, जानते हो, आप जब सड़क पर चलते होगे तो लिखा रहता है कि दाएं घूम बाएं घूम, वहां लिखा रहता है। वो जानते हो किस चीज से लिखा रहता है, रेडियम से। जब आपकी गाड़ी की लाइट पड़ती है, पड़ते ही उससे प्रकाश आता है, चमक आती है। वो प्रकाश कहां से आता है, रेडियम, लेकिन रेडियम से नहीं आता है वो प्रकाश, अपनी गाड़ी से आता है। अगर रेडियम से प्रकाश आता तो हम गाड़ी बंद कर दें, लाइट बंद कर दें, तो चमकना बंद हो जाए, अंधेरे में खो जाए। सैकड़ों साल से अंधेरे में रहता है, जितने साल लगाए अंधेरे में, जैसे तुम्हारी गाड़ी की लाइट पड़ी उसमें से चमक शुरू हो गया, चमक आना शुरू हो गया। तो देखना, चमकता रेडियम है और प्रकाश कहां से आता है, गाड़ी से। उसी प्रकार मेरे बंधु, तुम अपने जीवन में अगर कुछ बड़े काम कर रहे हो, सफल हो रहे हो, महान हो रहे हो और बड़े बन रहे हो, तो समझना तुम नहीं हो रहे हो, चमक तुमसे आ रही है, प्रकाश किसी महापुरुष का, किसी प्रभु का, किसी ईश्वर के दृष्टि पड़ी है और तुम बड़े हो गए, रेडियम के जैसे चमक गए, नहीं तो अंधेरे में खोए रहते तुम भी, खोए रहते तुम भी। प्रभु सबसे दुनिया में अगर मेरे बंधुओं सबसे अधिक सुरक्षा है तो भगवान के शरणों में, ईश्वर के शरणों में, उससे अधिक सुरक्षा कहीं नहीं, नहीं, नहीं। तुम कहां सुरक्षित हो, जब डर लगता है तो भाग करके कहां आते हो, घर में, रूम में, और जब भूकंप होता है, पृथ्वी डोलती है, तो भाग के कहां जाते हो, रोड में। तो सुरक्षित कहां हो, रोड में हो या रूम में हो, बताओ, कहीं भी नहीं। डरा तो घर में भागा, और भूकंप हुआ तो बाहर भागा, तो न तुम बाहर सुरक्षित ना अंदर सुरक्षित। सबसे सुरक्षित अगर कोई है व्यक्ति, तो वो प्रभु के शरणों में है, हरि के शरणों में। कहते हैं हारी हारे को हरि का नाम, नहीं मैं नहीं मानता हूं, जीता उसका भी हरि का नाम। हनुमान कभी हारे जीवन में, हार कर गया वो तो स्वार्थ में गया। प्रभु के शरण में सबसे अधिक हम सुरक्षित हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आप शहरों में रहते हो, जब गाड़ी चलाते हो लाल बत्ती जलती है तो क्या करते हो, रुक जाते हो। पीली जलती है तो क्या करते हो, तैयार हो जाते हो। और हरी जलती है तो क्या करते हो, चल देते हो। एक बात बताओ, अगर लाल के तरफ चले गए तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो जरा देखो, और हरी हरी बत्ती की तरफ चले गए तो क्या होगा, सुरक्षित अपने घर पहुंच जाओगे। तो देखो मेरे बंधुओं, जो बत्ती हरी है उसके तरफ जाके तो हम सुरक्षित हो जाते हैं, अगर सही हरी की तरफ चले गए तो क्या होगा, कितने सुरक्षित हो जाएंगे। बत्ती हरी है, हरी बत्ती है, उसके तरफ जाके तो हम सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं, अगर सही हरी की तरफ चले गए तो कितने सुरक्षित हो जाएंगे। मेरे बंधुओं, कभी भी भगवान धर्म पर शक मत करना, कभी नहीं करना। हमारी हमारी आस्था, हमारी भक्ति इतनी होनी चाहिए। जब तुम महाभारत पढ़ोगे तो देखोगे अश्वस्थामा जो है पांडवों के पांचों बच्चों को मार देता है, उसका शर काट करके लाता है। उसको जब पांडव लोग पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उसको मृत्यु दंड दिया जाता है कि इसका भी इसको मार दो। कृष्ण क्या कहते हैं, छोड़ दो, मत मारो। देखो पांडवों को एक बार भी कोई प्रश्न नहीं करता है। उसके बेटे का सर काट करके सामने दुश्मन खड़ा है, उसका दुश्मन है, लेकिन प्रभु कहता है, उसका गुरु कहता है कि छोड़ दो उसको, तो छोड़ देता है। एक शब्द उधर नहीं देखता है। तुम गुरु की एक बात हुई शक कर लिया, दूसरी हुई शक कर लिया, भगवान पर कर लिया, अच्छा हुआ तो अच्छा बोल दिया, बुरा हुआ तो बुरा बोल दिया। तुम्हारी विश्वास कहाँ है? तुम्हारी विश्वास तो स्वार्थ पर है। लेकिन तुम तो वहां भी दिमाग चलाते हो, वहां भी सोचते हो कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे खुदा की बातें खुदा पर छोड़ो। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु अनंत है, उसकी लीलाएं अनंत है, उसका कार्य अनंत है। तीसरा दिन की जो आप लोगों को पंडित जी सुनाए होंगे, महिषासुर और माता के युद्ध का यही प्रसंग है ना, यही प्रसंग है। तो जिसमें महिषासुर का के जो सेनापति हैं, जो भी पराक्रमी योद्धा हैं, वो आते हैं युद्ध करने के लिए और माता से उनकी युद्ध होती है। देखो शक्ति दोनों तरफ है, महिषासुर के भी पास है और माँ के भी पास है, युद्ध होता है। एक शक्ति विनाशकारी है और दूसरी शक्ति क्या है, दैविक है, सृजन करने वाला है, रक्षा करने वाला है। एक हत्या करने वाला है और एक रक्षा करने वाला है। एक धर्म के विरोध है, एक धर्म के साथ है। तुलना में देखा जाए कोई शक्ति किसी से बड़ी नहीं है। बड़ा यह है कि एक धर्म के साथ है और एक अधर्म के साथ है। महाभारत में भी क्या हुआ, अगर तुलना करो तो कौरव बलवान थे पांडवों से, बड़ी बड़ी योद्धा थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, सारे लोग उधर थे। हुआ कि युधिष्ठिर से कुंती कहती है कि अरे उधर तो असंख्य सेना है, तुम कैसे जीतोगे, उधर तो असंख्य हैं। तो युधिष्ठिर करते हैं, माता उधर असंख्य है, मेरे साथ संख है। उधर असंख्य है, मेरे साथ संखधारी है, संख वाला है। तो असंख्य की हार हो सकती है, संख वाले की हार कभी नहीं हो सकती। जिसके पास संख हो उसकी विजय जरूर होगी, निश्चित विजय होगी उसकी। असंख हार जाए, उसकी संख्या है, संख वाले की कोई संख्या नहीं है। तो अधर्म के तरफ एक शक्ति है, दूसरी शक्ति। अब गीता में पंडित जी आपको स्वामी जी बताएंगे व्यासपीठ से कि तीन योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, तीन चीजों का देखना। ये तीनों का संगम हमारे जीवन में होना चाहिए। ज्ञान क्या है, हमारा ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। ज्ञान सपोज एक नदी है, नदी का जल जो हुआ उसको ज्ञान। कर्म योग जो नदी बह रहा है, चल रहा है, तो तुम्हारे जीवन में ज्ञान आया, कर्म किया, नदी बह रहा है। भक्ति क्या हुआ, नदी का दोनों किनारा, दो किनारे हुए। एक भक्ति किनारा है, अगर हमारे पास ज्ञान आया, कर्म आया और भक्ति ना आया तो अहंकार आ जाएगा, हम अहंकारी हो जाएंगे। भक्ति हमारा किनारा है, धन कमाओ, बल कमाओ, ज्ञान लो कि कोई भी चीज तुमने अर्जित किया है और भक्ति नहीं है तो तुम बिना किनारे के हो गए। अगर नदी का किनारा न हो, बांध न हो, तो क्या होगा जानते हो, नदी विनाशकारी हो जाती है, विनाश करती है। अगर बांध हो तो नदी हमारे जीवन के लिए सहायक होती है। तो हमारा भक्ति जो है वो बांध है दोनों तरफ का, और वो बांध टूट गया तो जीवन नहीं, नदी नहीं। तो मेरे बंधुओं, हमारे जीवन में भक्ति होनी बहुत जरूरी है।
गुरु आनंद से जोड़ के देखो भक्ति प्रेम का नाता, सद्गुरु दर के बनो सवाली और भिकारी दाता, सद्गुरु दर के बनो सवाली और भिकारी दाता। गुरु प्रेम का अमृत प्याला, गुरु प्रेम का अमृत प्याला, भर भर हमें पिलाता, भर भर हमें पिलाता, मेरे ब्रह्म ऋषि दरबार में सब लोगों का खाता।